नमो अरिहंतारणं नमो सिद्धार्णं नमो आयिर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं एषो पञ्च नमो यारो सौव पावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। पंच परमिष्टी और नौ देवताओं को नमोस्तु किया जाता है। नमोस्तु के योग्य या तो पांच हैं या तो नौ हैं। नौ या पांच, नौ को भी नमस्तु कर सकते हैं। पांच में ही शेष जो चार हैं उनका समावेश हो जाता है। एक दिन बताया था, यह विषय आया था, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, इनका समावेश किस किस को कहां कहां समावेश करेंगे। जिन धर्म क्या है, ये वीतराग धर्म, अहिंसा धर्म, हाँ ये की बात है, जीते बिना अहिंसक तो हो नहीं सकते। अहिंसा धर्म जीतने पर ही होता है। वीतराग धर्म कहो या अहिंसा धर्म कहो, कोई अंतर नहीं है। ये नहीं समझना चाहिए अपने को कि जीवों की रक्षा करना ही केवल अहिंसा है। ऐसा है क्या? राग छोड़ना भी, वीतराग होना भी अहिंसा है। असली अहिंसा तो यही है, आप वीतरागी हो जाएंगे तो बाहरी हिंसा हो ही नहीं सकती। असली अहिंसक बन जाओगे तो बाहर में हिंसा होना संभव नहीं। जैसे पंच परमिष्ठी, पंच परमिष्ठियों के जीवन में हिंसा होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अपनी असली अहिंसा को यानी वीतराग भाव को अपना जीवन बना लिया। वीतराग हमारा जीवन हो जाए तो बाहरी हिंसा होना संभव ही नहीं है। असली धर्म और असली अधर्म आत्माधीन होता है। थोड़ी आवाज और बढ़ाना। असली धर्म और असली अधर्म, असली धर्म और असली अधर्म कहाँ होता है? अपने आत्मा के भीतर ही होता है, बाहर नहीं होता। जो बाहर होता है वह अंतरंग के कारण से होता है। बाहर की जो हिंसा हो गई, यहाँ राग आया तब हो गई कि राग आए बिना हो गई हिंसा? राग आया तभी हिंसा बाहर की हो गई। और हम यदि अंदर का ठीक कर लेंगे तो बाहर तो ठीक अपने आप हो जाएगा। दूध का पात्र है जिसमें आप दूध गर्म करते हैं, बाहर कितना भी गंदा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जहां अपन दूध डालकर गर्म करना है वो भीतरी भाग स्वच्छ रहेगा, तो बाहर स्वच्छ हो ना हो अपने आप दूध की सुरक्षा हो जाएगी। अपन बाहर ही स्वच्छ कर देते हैं और भीतर स्वच्छ नहीं करते हैं तो दूध टिकने वाला नहीं है। भीतर का पात्र स्वच्छ होता है तो बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। ये है धर्म, ऐसा है धर्म। यदि भीतर से होने लग जाए तो बाहर का ऑटोमेटिक होगा, वो उसको करना ही नहीं पड़ता। हम वीतराग हो गए तो बाहरी धर्म तो ऑटोमेटिक आता है, इसलिए जैन धर्म को वीतराग धर्म कहा। और जैन धर्म किसका है? जो पाले उसका है, आत्मा का है, किसी वर्ग का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी समुदाय का नहीं। जैन धर्म उसका है, जो पाले उसका है, जो वीतराग हो गया उसी का है। और यह धर्म सब जगह तीन लोक में है। त्रिरंच गति में त्रिरंच भी जैन बन रहे हैं, बन रहे कि नहीं बन रहे? त्रिरंच भी मांसाहार को त्याग कर धर्मात्मा बन जाते हैं। ये कौन सा धर्म है? वो अहिंसा धर्म, मांस छोड़ दिया, अहिंसा धर्म है ना, उसका नाम क्या? जैन धर्म। त्रिरंच भी जैन धर्म स्वीकार करता है। ऐसे ऐसे उदाहरण शास्त्रों में आते हैं, हाथी भी दो प्रतिमा धारण करता है। कितनी प्रतिमा? हाथी भी दो प्रतिमाएं धारण करके आत्म कल्याण करता है। जिन भाषित एक पत्रिका है उसमें आज बहुत अच्छा लेख आया है इस संबंध में। किसी विद्वान ने लिखा है, त्रिरंच भी जैन धर्म किस प्रकार से स्वीकार करते हैं। बहुत अच्छा लेख आया, ये पत्रिका पढ़ने लायक है, घर घर बुलाइए इसको, बहुत अच्छा। स्वाध्याय आगे बढ़ाना हो, ज्ञान आगे बढ़ाना हो तो ये पत्रिका बहुत ही आप लोगों को सुविधाजनक है। ज्ञान संवर्धक सामग्री इसमें आती है। जिन भाषित लिखो और मंगवाओ उसको, 100 रुपए देंगे तो एक साल का, आप एक साल तक वो पत्रिका आएगी। और मासिक है ये, 12 निकलते हैं एक साल में। जिन भाषित अपने रूम में ही एक ले आना, उसका एड्रेस वगैरह सबको लिखवा दे। जिन भाषित टेबल पर रखा हुआ ऊपर, इस पत्रिका में आपके शंकाओं का निरसन भी आता है। कोई भी धार्मिक विषय संबंधी स्वाध्याय करते समय प्रश्न उत्पन्न होते ही तो उसको लिख करके यदि आप भेजेंगे तो आपका नाम और आपका उत्तर उस पत्रिका में आ जाएगी। ये है जिन भाषित पत्रिका, ये भोपाल से निकलती है, मध्य प्रदेश भोपाल, और इसमें आचार्य श्री के प्रवचन भी आते हैं, विद्वानों के लेख भी आते हैं, एकदम प्रामाणिक विषय इसके भीतर दिया जाता है। आचार्य श्री के प्रवचन, आचार्य श्री की कविताएं, और आप लोगों की शंका भेज देते हैं तो उनका समाधान सब आता रहता है। इसका एड्रेस लिखना है क्या? गलत हो जाएगा क्योंकि अंक वगैरह देख करके, अब आप एक बोर्ड पर लिख दो इसको तो सब लोग देख करके लिखेंगे, गलत नहीं होना चाहिए, देख करके लिखोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कहीं पहुंच जाए और कुछ भी हो जाए तो आपके 100 रुपये इसमें है क्या? नहीं, बोर्ड पर लिख दो तो सब देख के लिखेंगे, ये नहीं सबको दे नहीं पाएंगे। हाँ यही है, जिन भाषित पत्रिका सर्वोदय जैन विद्यापीठ, देखो गलत तो नहीं, प्रोफेसर कॉलोनी आगरा पत्रिका येरड़ा, इसको बोर्ड पर लिख करके लगाना ताकि सभी लोग लिख सके देख करके। नहीं, आपको तो आता है, जो भी लिख और बुलवाना चाहते हैं उनको एड्रेस बोर्ड पर लिखवा दो तो देख करके निर्दोष लिखेंगे, एड्रेस गलत हो जाएगा तो आएगा नहीं। अगस्त महीने के अंक में बहुत अच्छे लेख आए, एक से बढ़कर के एक। तो जैन धर्म, जैन धर्म चारों गति में है, स्वर्ग में देवलोक भी जैन हैं और अजैन भी हैं। अजैन कौन? जिन्होंने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना वो अजैन, अपने रागादि भावों को नहीं पहचाना, आत्मस्वरूप को नहीं पहचाना वो अजैन, और जिन्होंने अपने को पहचान लिया वो जैन। ये इसलिए इस धर्म को विश्व धर्म, जीव धर्म, जैन धर्म, अहिंसा धर्म, वीतराग धर्म आदि अनेक नाम हैं, निर्ग्रंथ धर्म, निघंट, प्राचीन काल में महावीर भगवान के काल में इसका नाम था निघंट धम्मो, निर्ग्रंथ धर्म यानी वीतराग धर्म, ग्रंथ परिग्रह, निघंट गंठ यानी परिग्रह, ग्रंथ ग्रंथ यानी परिग्रह, परिग्रह से रहित धर्म वीतराग धर्म, अहिंसा धर्म, इस प्रकार उसका अर्थ है। कल विषय चला था पंच परमेष्टियों को नमोस्तु बोला जाएगा, नमोस्तु बोलते हैं। नमोस्तु का अर्थ होता है मैं नमन करता हूं, ये है। क्या करता हूं? मैं नमन करता हूं। किसके लिए नमन करता हूं? गुणों के लिए नमन करता हूं। गुण क्या है? गुण क्या है? रत्नत्रय है। गुणों की वंदना होती है जैन धर्म में, गुणों की वंदना होती है। शक्ति की वंदना नहीं होती, सुंदरता की वंदना नहीं होती, उच्च कुल की वंदना नहीं होती, उच्च जाति की वंदना नहीं होती, शरीर की वंदना नहीं होती, शरीर के गुणधर्मों की वंदना नहीं होती, आत्मा के गुणों की वंदना होती है। और आत्मा के गुण हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और लोक में जो धर्म हैं उनमें किसकी वंदना की जाती है? फेमस है, आप सब देख रहे हैं, शक्ति की वंदना, परिग्रहधारी की वंदना, चमत्कार की वंदना, सुंदर रूप की वंदना। अब कुछ लोगों को जो ये आदत पड़ गई, संस्कार आ गई कि सुगंध शरीर प्राप्ताय, कहते हैं पूजन के टाइम में धूपम, क्या क्या बोलते हैं ना, धूपम बोलते हैं है? गंधम, हाँ, शरीर शरीर सुगंध शरीर प्राप्ताय गंधम निरूपामिति स्वाहा। क्या आप सुगंध शरीर चाहते हैं? यानी शरीर के गुणों को, सुगंध गुण को प्राप्त करने के लिए आप अगर अर्घ चढ़ा रहे हैं तो आप शरीर को सजा रहे हैं धर्म करके, धर्म करके शरीर के गुणों की याचना कर रहे हैं। तो ये क्या धर्म है, क्या अधर्म है? भगवान के सामने बैठ करके ऐसे मंत्र पढ़ना कि सुगंध शरीर मिले, तो ये तो मिथ्या तो है। हाँ हाँ, नहीं प्राप्ताय कह रहे हैं ना, उसका अर्थ क्या है? शरीर सुगंध प्राप्ताय, इसका क्या मीनिंग हुआ? मुझे प्राप्त हो। उनका तो है ही सुगंध, पर सुगंध शरीर की भी पूजा नहीं कर रहे हैं हम, भगवान की आत्मा की पूजा कर रहे हैं, आत्मा के गुणों की पूजा कर रहे हैं, आत्मा के उनके आत्मा के गुणों की पूजा कर रहे हैं, उनके रत्नत्रय की पूजा कर रहे हैं, उनके केवल ज्ञान की पूजा कर रहे हैं। शरीर सुगंध को दृष्टि में क्यों लाया गया? तो ये देखा देखी कभी पहला पासून, कभी न कभी गड़बड़ हुआ है, कभी न कभी पीछे गड़बड़ हुआ है। ऐसी एक एक बातें गड़बड़ होती जाए तो जैन धर्म समाप्त हो जाएगा। धर्म खत्म कहाँ होता मालूम? नाश कहाँ होता है? जहां हमें ज्ञान नहीं होता और थोड़ा सा भटक जाते हैं, वहां एक जगह भटक गए, दूसरी जगह फिर ज्ञान नहीं होने से दूसरी जगह भटक गए, तीसरी जगह और भटक गए, भटकते 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 मार्ग ही छोड़ देते हैं। कितनी कितनी जगह हम भटकते हैं, जितनी जगह हम भटकते हैं उतनी जगह हम धर्म की हानि पाते हैं। और फिर आगे जाकर के संभालने में, अपने आप को होश में लाकर मार्ग पर लगाने में कितना मेहनत हो जाती है। स्वाध्याय करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, और फिर जो संस्कार पड़े हैं उसको धोना पड़ता है, बहुत कठिनाई आती है। गलत मार्ग पर चलना तो एक दिन में होता है और वो अज्ञान से होता है, कोई मेहनत से नहीं होता। बहुत परिश्रम करके हमने गलती कर दी, परिश्रम होता है क्या? गलती करते समय मेहनत होती है क्या? गलती तो बिना मेहनत के होती है और एक दिन में होता है। और वह ज्ञान अगर आपको जल्दी नहीं आया, होश में नहीं आए, तो जिंदगी उसमें चली जाती है और बीच में जाकर के फिर जग जाते हैं तो हमने अभी तक ऐसा किया है, अब कैसे छोड़ना? पहला पासून आ गया, देखो ये पहला पासून कैसे छोड़ना, पहला पासून कैसे छोड़ना, ये आता है जीव को तो उसका व्यसनी बनता है ना वो। अब मुंह को भी आदत पड़ गया, सुगंध शरीर प्राप्त आया, गंध की अर्घ्य वो मंत्र आ गया तो वही बोलेगा सुगंध शरीर प्राप्त आया, तो ये आदत पड़ जाती है। एक बार मुंह में आदत पड़ गया तो मुंह भी वही बोलने लगता है, वो भी मशीन का काम करने लगता है। एक बार उच्चारण भी गलत हो गया ना, उच्चारण सुगंध की जगह सुगंध बोल दिया, द बोल दिया, तो उस उच्चारण को भी सुधारना बहुत कठिन पड़ता है। शुरू में सुधार दिया तो सुधार हो जाएगा, वही आदत पड़ जाएगी। और गलत की आदत एक बार हो गई वो कालांतर में ऐसा बच जाता है, उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उच्चारण सुधारो संभव नहीं, और फिर सुधारने के लिए इतनी जागृति रखनी पड़ती है, जब भी मैं इस शब्द को मुंह से निकालूंगा इसको बिल्कुल सावधानी से निकालूंगा और सावधानी से, ऐसा जागृत रहोगे तो बच जाओगे, जागृत नहीं रहोगे तो वो बचने की संभावना ही नहीं रहती, ऐसा बेहोश जीवन चलता है। धर्म बेहोशी से होता नहीं है, होश से चलना पड़ेगा। क्या बता रहे थे? पंच परमेष्टि के लिए और नौ देवताओं के लिए नमोस्तु शब्द का उपयोग किया जाता है। नमोस्तु गुणों को ही किया जाता है, जहां गुण नहीं है वहां पर नमोस्तु नहीं करते। जैन परंपरा में यह एक आदर्श बात है कि हम किसी को नमोस्तु नहीं करते। इच्छा में करते हैं, वंदामी करते हैं और जय जिनेन्द्र करते हैं। ये तीन शब्द को छोड़कर नमोस्तु शब्द का उपयोग अन्यों को नहीं करते, पंच परमेष्टि और नौ देवता। अब कुछ लोगों की बात ऐसी है जिनको कुछ भी पता नहीं। नमस्कार साहब, नमस्कार कहो नमस्तु कहो एक ही बात है, अर्थ डिफरेंस नहीं है, पर उनको कुछ भी पता नहीं। नमस्कार का क्या, नमस्तु का क्या, इच्छामि का क्या, जय जिनेन्द्र का क्या, कुछ मतलब ही नहीं है उनको, तो सामने आया नमस्कार साहब इतना ही मालूम। अज्ञानी कुछ भी बोल सकता है, ज्ञानी होश में रहता है, ये कौन आ रहा है मुझे क्या बोलना चाहिए सोचता है वो, अज्ञानी नहीं सोचता। सबके लिए नमस्कार। जनरल बना दिया, जनरली हो गया वो, व्यवहार है, व्यवहार गलत नहीं होना चाहिए, व्यवहार को सम्यक रखना चाहिए, यथार्थ सत्य रखना चाहिए। न नमोस्तु करना ये व्यवहार की गलती है। नमोस्तु कहना या नमस्कार करना व्यवहार की गलती है। ये व्यवहार को ही सुधारना है, व्यवहार में जो गलती हो रही है उसी को सुधारना है। हाँ कहते हैं ना, लेकिन आपको भी उनका संस्कार आ जाए तो आप भी कहेंगे। जैन लोग भी कहते हैं ना, जिनको ज्ञान नहीं है उन्होंने नमस्कार किया तो इन्होंने भी नमस्कार किया, उन्होंने जय श्री राम कहा तो इन्होंने भी जय श्री राम कहा, गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास, ऐसे जैन भी तो है। नमस्कार बड़े को किया जाता है ये ठीक है, लेकिन व्यवहार की वह गलती है। बड़े हो छोटे हो जय जिनेन्द्र के अलावा कोई भी शब्द नहीं बोलना। माता पिता को भी जय जिनेन्द्र, चरण स्पर्श होता है, विनय होता है, चरण स्पर्श माता पिता का करके जय जिनेन्द्र। नमस्कार करोगे गलत हो जाएगा। तीर्थंकरों का परमिशन नहीं है, माता पिता को तुम नमोस्तु कर दो, नमस्कार कर दो। माता पिता सही में है क्या? है क्या माता पिता निर्ग्रंथ है क्या? हाँ, तुम्हारे माता पिता आरिका बन जाए और पिता मुनि बन जाए तो नमोस्तु बोलना, नमस्कार बोलना, उस समय बोलना। पर माता पिता सही में है या असही में? तो असही में है तो उनके लिए क्या व्यवहार है, ये भी तो लिखा हुआ है ना। जय जिनेन्द्र, इससे जा रहे हाथ भी तो जोड़ रहे हैं अपन, तो हाथ जोड़ना ये नमस्कार का प्रतीक नहीं, विनय का प्रतीक, बड़े हैं उसका प्रतीक। आपको माता पिता हाथ जोड़ते आशीर्वाद देते, माता पिता से आशीर्वाद लेना चाहिए ये व्यवहार है, और छोटे को हाथ जोड़ना चाहिए, हाथ ही नहीं जोड़ना चाहिए चरण स्पर्श भी करना चाहिए, ये व्यवहार की विनय है। पर बोलते समय क्या बोलना चाहिए इसका विधान है, संविधान है, क्या बोलना चाहिए? जय जिनेन्द्र। अन्यथा माता पिता को नमस्कार या नमोस्तु बोलोगे तो असयमी को वंदना की तो कोई प्रश्न उठाएगा कि तुमने नमस्कार क्यों किया, तो उत्तर क्या? बड़े हैं ये उत्तर होगा क्या? नहीं, बड़े हैं ये उत्तर नहीं उसका, उनमें गुण हैं ये कहना पड़ेगा, ये तो या तो ये कहना पड़ेगा या तो असयम है दोष है या तो ये कहना पड़ेगा। तो असयम है, अभी वस्त्रधारी मुनि दीक्षा नहीं ली है तुम्हारे माता पिता ने तो नमोस्तु क्यों बोला? तो एक शास्त्र ज्ञाता भी, यदि माता शास्त्र ज्ञाता माता पिता है मान लो, वो क्या स्वीकार करेंगे तुम्हारे इस बात को? वो जिनवानी समझते ही मान लो, वो क्या स्वीकार करेंगे तुम नमोस्तु कर रहे हैं और वो चुपचाप आशीर्वाद दे रहे हैं? कुछ बेटे को समझाएंगी कि नहीं समझाएंगे? क्या समझाएंगे वो? बेटा नमोस्तु नहीं बोला जाता, खबरदार आज तक तुझे ज्ञान नहीं, ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो माता पिता को ये समझाना चाहिए कि बेटों से, बेटा हमको नमोस्तु नहीं बोलना, जैन धर्म है, सिद्धांत के अनुसार तुझे चलना है, हमको भी चलना है, और शास्त्र छोड़ करके हम दोनों चलेंगे तो मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे, तो सम्यक्त्व को सुरक्षित रखना है, अपनी धर्म की रक्षा के लिए ये सब कुछ करना है, शास्त्रानुसार चर्या। रत्नकर्णिक श्रावकाचार्य में क्या कहा है? विषय आशा विषातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरत्त तपस्वी स प्रशस्यते। गुरु वही हैं जिन्होंने संयम धारण कर लिया, नमोस्तु के योग्य वही हैं जिन्होंने संपूर्ण हिंसा को त्यागा है, छोड़ा है, वो नमोस्तु के योग्य हैं। माता हो, पिता हो, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी संसारी प्राणी हो, मैं चारों गति के जीवों को लेकर के बोल रहा हूँ। तीर्थंकरों ने चारों गति के सामुदायिक जीवों को लक्ष्य में रख करके बोला, तुमको नमोस्तु तो उन्हीं को बोलना है जिन्होंने संयम धारण किया, रत्नत्रय धारण किया है। और दुनिया में ऐसा जो दिखते हैं वो किस गति में दिखेंगे तुम्हें? मनुष्य गति में दिखेंगे। और वो कैसे रहेंगे? दिगंबर ही रहेंगे, कोई भी वस्तु उनके साथ में नहीं रहेगी, वस्तु के प्रति राग भाव नहीं रहेगा, ऐसा दिखेंगे। उनको तो नमोस्तु बोलना। और वस्त्रधारी दिखे तो तीन शब्द और देते हैं, ये ले लो, जय जिनेन्द्र, इच्छामि, वंदामि, तीन शब्द दे दिया। जय जिनेन्द्र किसको? जिन्होंने कुछ भी नहीं त्यागा है, समझ के चले कि उन्होंने मिथ्या तो तक त्यागा नहीं है, तो उनके लिए भी क्या बोलेंगे? जय जिनेन्द्र। मिथ्यात्व भी नहीं त्यागा उनके लिए भी जय जिनेन्द्र। और जिन्होंने सम्यक दर्शन धारण किया है किंतु प्रतिमा वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, उनके लिए क्या बोलेंगे? उनके लिए भी जय जिनेन्द्र। और प्रतिमा धारण किया है तो उनको वंदना बोलना। हाथ तो सबको जोड़ा जाता है, जय जिनेन्द्र करते समय भी हाथ जोड़ते हो, जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? विनय है। एक सम्यक तो रहित व्यक्ति है, वो जय जिनेन्द्र बोल रहा है, आप भी जय जिनेन्द्र बोलेंगे, तो वो हाथ जोड़ करके बोल रहा है, आप हाथ जोड़ोगे कि नहीं? नहीं, मैं सम्यक दृष्टि हूं, हाथ नहीं जोड़ता। हाथ जोड़ना, चरण स्पर्श करना, ये लौकिक विनय कहलाता है। हाथ जोड़ना, चरण स्पर्श करना लौकिक विनय है, परंतु धार्मिक विनय क्या है? जय जिनेन्द्र कहना, ये धार्मिक विनय है। आप केवल जय जिनेन्द्र के लायक ही हो, नमोस्तु के लायक नहीं, ये धार्मिक विनय हुआ। धर्म की विनय की आपने, गुण को गुण माना, दोष को दोष माना, गुण गुण ही हैं, दोष दोष ही हैं। हम गुणों को दोष नहीं समझेंगे और दोषों को गुण नहीं समझेंगे। गुण और दोष को देख करके शब्दोच्चारण होगा, पर विनय तो कॉमन है। हाथ जोड़ना कॉमन है, चरण स्पर्श कॉमन है, आप भगवान के भी चरण स्पर्श करते मंदिर में, कभी कभी करते कि नहीं करते? गुरुओं के भी करते हैं, तो जैसे गुरुओं के चरण स्पर्श करते हैं वैसे ही माता पिता के भी चरण स्पर्श कर रहे हैं। विनय कॉमन है दोनों तरफ, एक उसमें लौकिक विनय है और एक परमार्थ विनय है। लौकिक विनय लोक तक सीमित है, परमार्थ विनय परमार्थ के लिए सीमित है। लेकिन शब्दों की गड़बड़ी नहीं करना, शब्द गड़बड़ हो गए तो धर्म को धक्का लगता है। आपको सम्यक दर्शन जो धर्म है ना, आपके सम्यक दर्शन के धर्म के लिए धक्का लगेगा अगर शब्द चेंज हो गए तो। जो प्रतिमाधारी नहीं है उनके लिए इच्छामि कर दिया या नमस्कार बोल दिया या वंदामि बोल दिया, ऐसा नहीं होता। जिसके पास प्रतिमा नहीं, जो रंच मात्र भी अहिंसा धर्म को पालन नहीं कर रहा है, और वह मिथ्या दृष्टि है या तो सम्यक दृष्टि है, उनके लिए एक शब्द दे दिया व्यवस्थित रूप से, जय जिनेन्द्र बोलना। अब हम इन शब्दों का अर्थ समझे, जय जिनेन्द्र का क्या अर्थ होता है, वंदामी का अर्थ क्या होता है, इच्छामी का अर्थ क्या होता है, नमस्तु का क्या मीनिंग होता है, मीनिंग समझेंगे तो अपन बोलते समय इन शब्दों का उपयोग करते हुए किसी से बोलेंगे भी तो उस समय अपने को ये पता रहेगा कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं शास्त्रानुसार। अपने मन में एक संतुष्टि रहेगी कि हमने गलत नहीं किया है, और शब्दों का अर्थ ही मालूम नहीं रहेगा तो यही रहेगा कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, शल्य रहेगा। तो ऐसा नहीं, इन शब्दों का अर्थ भी हमें ध्यान में रखना है। तो जय जिनेन्द्र का क्या अर्थ होता है ध्यान में रखेंगे, बता रहा हूं। जय जिनेन्द्र नहीं, इसमें पाठ में है काहे को लिखते हैं, जब हम समझाते हैं आप लोग लिख करके तैयारी करते हैं कॉपी। देखो पाठ में सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैं समझा रहा हूं उस चीज को, सुन रहे हैं ना, एकाग्रता से सुन रहे हैं। लूज हो गया है थोड़ा, ये नीचे 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 आता है धीरे धीरे धीरे। जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र किसका नाम है, भगवान का। सामने वाला व्यक्ति भगवान है क्या, नहीं है। और जय का क्या अर्थ होता है, जीतना, जयवंत हो जाओ, जीतो, ये अभिवादन है, जयवंत हो जाओ तुम भी जीतो। जीता हुआ व्यक्ति कौन, जिनेन्द्र। जिनेन्द्र ने सब कुछ जीत लिया है, जैसा उन्होंने जीता है वैसा तुम भी जीत जाओ। जीतने के लिए आपके पास क्या क्या है, मिथ्यात्व, इंद्रियां, कर्म, ये आत्मिक प्रदूषण। आत्मिक प्रदूषण को जीतने के लिए हम उनसे कहते हैं, जय जिनेन्द्र कहते समय, जय जिनेन्द्र में एक ही शब्द में कह दिया, जय जिनेन्द्र ने तुम मिथ्यात्व को जीतो, इंद्रियों को जीतो, असंयम को जीतो, कर्मों को जीतो, और क्या बन जाओ, जिनेन्द्र बन जाओ। आपसे हम नमस्तु नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप जिनेन्द्र बन जाओ। हाथ जोड़ रहे हैं, ये किस लिए जोड़ रहे हैं, आप बन सकते हैं इसलिए हम आदर कर रहे हैं आपका। आप में जिनेन्द्र बनने की योग्यता है क्या, नहीं। आप भव्य हैं क्या, नहीं। आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सारी योग्यताएं संजोई हुई आपकी आत्मा है, और आत्मा की उस शक्ति को तुम प्रकट कर लेना। आपस में मिल गए, दो व्यक्ति आ गए, दोनों भव्य हैं, तुम भी मोक्ष जा सकते हो, तुम भी जिनेन्द्र बन सकते हो, विकारों को जीत सकते हो और तुम भी जीत सकते हो, दोनों जीतने की योग्यता वाले हैं। भव्य तो है, हम किसी को अभव क्यों समझे, हैं? अभव समझना गलत है क्या, नहीं। हाँ, और अगर मान के चले कि भगवान ने भी आपसे कहा था सामने वाला व्यक्ति अभव है, तो उनसे जय जिनेन्द्र करोगे कि नहीं करोगे, और जीतने की ताकत तो है ही नहीं उसमें, मिथ्यात्व को नहीं जीत सकेगा, इंद्रियों को नहीं जीत सकेगा, गुणस्थान परिवर्तन उसका होता ही नहीं है, पहले गुणस्थान में ही रहेगा। ऐसे अभव्य को, फलाना व्यक्ति अभव्य है, आपको समोषण में भगवान ने बताया, भगवान ने बताया तो गारंटी है, उस व्यक्ति को आप जय जिनेन्द्र कहोगे कि नहीं, कहोगे तो व्यर्थ है, व्यर्थ जाएगा, बनने वाला तो है ही नहीं है? क्या बोलने, वही तो बता रहा हूं। अब अभव्य है, अभव्य को ये कहोगे क्या, मैं समोषण गया था और तुम्हारा नाम भगवान ने ले लिया और तुमको अभव्य कहा है, और अभव्य का लक्षण तुम अभव्य हो, कहने की कोई जरूरत नहीं। तुम क्या हो तुमको मालूम होगा ही, तुम चिंतनशील होंगे ही, तो उसको क्या मालूम। एक बार भी समोषण में नहीं गया, मैं अभव भी हूं ये भी मालूम नहीं और भव भी हूं ये भी मालूम नहीं। अब वो उनसे कहता है क्या तुम सुना रहे हो भव्य अभव, ये शब्द हमने पहली बार सुना। तो मान के चले कि उसने समझा दिया, अभव का मतलब ये है कि मोक्ष नहीं जाता। अब मोक्ष शब्द भी नया पड़ गया उनको, मोक्ष शब्द भी नया पड़ गया। मोक्ष क्या होता है कहेंगे वो, तो मोक्ष का मतलब ये है कि चार गति से ही वह जीव निर्वाण को प्राप्त होता है, लौट करके संसार में जन्म मरण नहीं करता, ऐसी दशा को मोक्ष कहते हैं। ऐसी तुम्हारी आत्मा की दशा मोक्ष है। तो आत्मा शब्द भी नया पड़ गया कि आत्मा क्या चीज है फिर, वो सब कुछ है कि नहीं। आत्मा है, उसका शरीर भी है, उसमें मोक्ष भी है, उसमें सम्यक दर्शन भी है, सब कुछ है क्या नहीं। गुणों के अभिव्यक्ति की योग्यता भर नहीं है, परंतु वहां पर सम्यक्त्व भी है, केवल ज्ञान भी है, मोक्ष भी है, सब ताकत अंदर है, परंतु उस ताकत को प्रकट करने की योग्यता उस जीव के पास नहीं है। अब ये कहता है जय जिनेन्द्र, करूं क्या नहीं करूं, अभव भी है, मोक्ष तो जाएगा नहीं। तो ऐसा नियम नहीं बनाए जा सकते कि जो मोक्ष जाता है, जाने की योग्यता रखता है, उन्हीं के लिए जय जिनेन्द्र बोलो और जो नहीं जा सकता उनके लिए नहीं बोलो, ऐसा नहीं। जय जिनेन्द्र बोलना एक व्यवहार है। तुम अभव हो, मेरे मन में दुख होता है तुमको अभव देख करके, और मैं रह नहीं सकता, तुम अभव ही हो जाओ या रहो, तुम भव्य बन जाओ, ये मेरी इच्छा है। लेकिन तुम्हारी इच्छा से क्या वो भव बन जाएगा, अभव्य है नहीं, अभव्य भव्य बन सकता है क्या, बनेगा। हाँ, वो एक बार कहा था हमने प्रवचन में, आप भूल गए, अभव्य जीव तीन काल में भव्य नहीं बन सकता, और भव्य अगर है तो अभव्य नहीं बन सकता। भव्य जीव कभी अभव्य नहीं बनते ही नहीं, ये प्राकृतिक शक्तियां हैं, ये किसी कर्म की देन नहीं, किसी गलती की देन नहीं, किसी अपराध की देन नहीं। भव्य और अभव्य प्रकृति से हम रहते हैं, होते नहीं। होना तो तब सवाल जब हम भव्य हैं और अभव्य रूप में कन्वर्ट होते हैं, होना तो तब सवाल है, होते नहीं, होने की चीज नहीं है ये। ये मूलतः हम निबोध से ही, अनादिकाल से ही या तो भव्य हैं या तो अभव्य हैं, और जो हैं जिस अवस्था में हम हैं उस अवस्था का विनाश कभी नहीं होता। हम भव्य हैं तो अनंत काल तक अभव्य ही रहेंगे, और अनंत काल से हम अभव्य ही थे। हम भव्य हैं तो अनंत काल से हम भव्य ही थे और भव्य ही रहेंगे। शेष बात यह है कि हम कर्मों के कारण से, अज्ञान के कारण से सम्यक दर्शन आदि प्राप्त नहीं करते थे, मिथ्यात्व में थे, पहले गुणस्थान में थे। ये कर्म का उदय हमारा अपराध है। ये अपराध क्या है, हमने मिथ्यात्व कर्म किया, ये हमारा अपराध है। पर मिथ्यात्व जब कर रहा है तब क्या अभव्य कहोगे, नहीं। मिथ्यात्व करता हो, पहले ही गुणस्थान में रहता हो, चाहे जितने बड़ा सा बड़ा पाप करके सातवें नरक में भी क्यों नहीं जाता हो, सातवें नरक में जाने के बाद भी वो भव्य है, और स्वर्ग में जाने के बाद भी वह भव्य है। दोष अवस्था में भी भव्य है और गुण अवस्था में भी भव्य है। भव्य का तात्पर्य इतना ही कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि प्राप्त कर सकने की योग्यता रखता है, पात्रता रखता है, वो पात्रता वह शक्ति उसकी भव्यत्व है, वो भव्यत्व शक्ति है। तो सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने के बाद उसकी पहचान हो जाएगी कि मैं भव्य ही था, पहले से ही भव्य था, अभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी भव्य हूं। परंतु सम्यक से पहले मैं मिथ्या दृष्टि भव्य था, नहीं भव्य मिथ्या दृष्टि था, मेरा नाम क्या था उस समय? भव्य मिथ्या दृष्टि। अब क्या है मेरा नाम? भव्य सम्यक दृष्टि मेरा नाम। मोक्ष में जाऊंगा, सिद्ध भगवान बन जाऊंगा, तब मेरा नाम भव्य सिद्ध आत्मा, मैं भव्य सिद्ध आत्मा। भव्यत्वपना नाश नहीं होता, भव्य का मतलब होने योग्य, होनहार, इतना ही अर्थ है। जो होनहार होता है वो भव्य, होनहार होने की योग्यता रखता है वह भव्य। बिल्कुल, कुछ भव्य यानी 100% भव्य मोक्ष जाते हैं, कभी न कभी सम्यक दर्शन धारण करके मोक्ष जाते हैं, जाएंगे ही, नियम है। हो सकता है अभवी जीव भी उच्च कुल में जन्म ले सकता है। उच्च कुल में जन्म लेना एक कर्म की देन है, थोड़ा पुण्य कर्म कर लो तो उच्च जन्म, उच्च गति, उच्च कुल, उच्च जाति, सुंदर शरीर, स्वर्ग, आयुषाराम, राजा, राजपद सब मिल सकता है अभव जीव को। भौतिक सुख जो है ना सभी मिल सकते हैं, संसार सुख अभव जीव को सभी मिल सकते हैं, धर्म सुख नहीं मिल सकता अभव जीव को, मिलेगा भी नहीं। आप क्यों ये पूछो, पूछते ही हैं, बार बार पूछते हैं ऐसा क्यों? क्यों तो वो नेचुरली, उसका नेचर ही ऐसा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, उसकी प्रकृति ही ऐसा है। प्रकृति का, प्रकृति के लिए कोई औषधि होती है क्या है? स्वभावाय नास्ति औषधि, स्वभाव के लिए औषधि नहीं होती है, जो स्वभाव है उसके लिए औषधि होती ही नहीं है। देखो पत्थर हल्का है क्या? भारी है, भारी होता है, हल्का होता है क्या? ये बात अलग है, दूसरा पत्थर बड़ा है, ये छोटा है, कौन हल्का है? कहते हैं ये हल्का है, तो हल्का उसकी प्रकृति नहीं है, दोनों भारी ही हैं। कोई उसमें से हल्का होता तो एक तैरता और एक डूबता, तो बड़ा पत्थर को तो डूबना चाहिए और हल्का पत्थर को तैरना चाहिए। हल्के का मतलब ये नहीं कि उसकी प्रकृति हल्की है, हम अपेक्षाकृत हल्की कह रहे हैं, बड़े पत्थर की अपेक्षा से छोटा पत्थर हल्का है, इसका अर्थ ये है कि तैरता है, इसका मीनिंग ये तो नहीं कि तैरता है हल्का कहने से। तो लकड़ी, लकड़ी पत्थर से हल्की है, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं पत्थर छोटा है, लकड़ी बहुत बड़ी है और पत्थर से भी वजन है, पत्थर से भी वजन है। एक किलो का पत्थर है, 10 किलो की लकड़ी है, दोनों को पानी में छोड़ो, हाँ 10 किलो की लकड़ी तैरेगी और 1 किलो का पत्थर डूबेगा, ये क्यों हो रहा है ऐसा? वो स्वभाव है, वो स्वभाव है। 100 किलो की वजन वाला लकड़ी ले आओ तो भी तैरेगी, तो वजन तो बढ़ता जा रहा है और डूब क्यों नहीं रहा है? उसका स्वभाव, उस लकड़ी के स्वभाव को कोई औषधि है क्या कि किसी जमाने में ऐसी लकड़ी पैदा होने लग जाए कि वो डूबने लग जाए? हो सकता है? ये उदाहरण ध्यान रखो, आपके दिल में यही प्रश्न रहता है कि वो अभव्य मोक्ष क्यों नहीं जाता, वो भव्य क्यों नहीं बनता, उस इसका क्या उत्तर है? वही स्वभाव है। इस ध्यान रखो कि वो स्वभाव है। स्वभाव के लिए कोई उत्तर है? और स्वभाव को चेंज कर सकते हो आप? नहीं, वो खुद ही चेंज नहीं करता है, तो दूसरा कौन चेंज कर सकता उसको? लकड़ी लकड़ी ही रहेगी, चाहे वो 1000 किलो की हो चाहे 1 किलो की हो, वो तैरेगी। वो अपना स्वभाव छोड़ेगा नहीं, तैरने के स्वभाव को छोड़ेगा नहीं। और पत्थर चाहे कंकर भी हो, 1 ग्राम का भी हो वो डूबेगा, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। पत्थर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, लकड़ी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, और इस स्वभाव को छुड़ाने का और छोड़ने का कोई औषधि नहीं है। ऐसे भव्य जीव, भव्य रहेगा तो भव्य ही रहेगा, कहीं भी रहेगी, नरक में रहे, स्वर्ग में रहे, मनुष्य गति में आए, कोई राजा बन जाए, भगवान के पास चले जाए, धर्म सुन ले, धर्म सुन सकता है कि नहीं, समोह शरण में जाए, भगवान के चरणों में बैठ जाए, रो लें कि भगवान मुझे भव्य बनाओ, 1000 बार रो, भव्य नहीं बना सकती। लकड़ी जाकर के कहे भगवान से, भगवान मुझे पत्थर बनाओ, भगवान लकड़ी को पत्थर बना सकते? पत्थर रोए भगवान से, भगवान के सामने बैठ करके, हे भगवान मैं, दुनिया मुझे ऐसी कहती है कि मैं डूबता हूं डूबता हूं डूबता हूं, मेरी कीमत नहीं बचा रही है दुनिया, और मुझे अब डूबना नहीं है, मुझे लकड़ी के समान हल्का बनाओ। हम सभी पत्थर दुनिया में जितने हैं सब तैरने लग जाए, ऐसा बनाओ। कोई बना सकता भगवान? भगवान की क्या ताकत है कि पत्थर को हल्का बनाए? तो पत्थर हल्का है क्या? नहीं। हाँ, क्यों? आप कहते हैं तो नैसर्गिक है, डूबना उसका स्वभाव है, हल्कापन और भारीपन ये उसका स्वभाव नहीं, डूबना उसका स्वभाव है। और क्यों डूब रहा है, उसका कारण क्या है? उस स्वभाव से जड़ है, ऐसा नहीं, उससे जड़ वाला पदार्थ, उससे हल्का पदार्थ पानी है, तो ऐसे हम एकांत से नहीं कह सकते कि पानी वो पत्थर से हल्का है। तो 4 किलो पानी रखोगे और 1 किलो पत्थर रखोगे तो फिर समस्या आएगी हल्का कहाँ है महाराज, जड़ कहाँ है, दोनों प्रश्न पूछोगे। तो ये है कि जो वस्तु ठोस होती है, ठोस भी होती है और वह जड़ भी होती है, और जो वस्तु तरल होती है और ठोस नहीं होती, तरल होती है, उस वस्तु में इस वस्तु को छोड़ोगे तो ये वस्तु डूबती है, और वो वस्तु उसे डूबने वाले पदार्थ को डुबा देती है, क्योंकि वो हल्की है और ये जड़ स्वभाव वाला ठोस है, इसलिए डूब जाता है। बात ये है। किंतु अपने को, उदाहरण तो एक दिश होता है, अपने को ये समझना है, पत्थर कभी पानी में तैरता नहीं, लकड़ी कभी पानी में डूबती नहीं। इसका कारण ढूंढने के लिए जाओगे तो अपने अपने वस्तुओं का अपना अपना वह स्वभाव है, नेचर है, इतना ही कहना है। किसी भी जमाने में पत्थर तैरा नहीं और तैरेगा भी नहीं, चमत्कार बात अलग है। हाँ, वो चमत्कार बात अलग है, मैं कह रहा हूं वो हो सकता है अनुमान का चमत्कार। उस लंका के किनारे आज भी वही पत्थर पड़े हुए हैं, तो आप भी जाओ, हनुमान का भी नाम लो और राम का भी नाम लो, दोनों का नाम लो, वो चमत्कारी का नाम लो और उनके भगवान का भी नाम लो और पत्थर फेंको, देखेंगे तैरेगा। हाँ, आप में चमत्कारवादिता आ जाए तैर सकता है, पर पत्थर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, ये आपके चमत्कार की शक्ति के कारण से तैर रहा है, अपने स्वभाव को छोड़े बिना तैर रहा है। वो स्वभाव को छोड़ करके तैर रहा है क्या? ऐसा हो गया होता तो हनुमान उस जमाने के सदा सदा के लिए पत्थर हमेशा तैरते रहे इस दुनिया के, ऐसा चमत्कार करके चली जाती तो आज क्या स्थिति होती है? पुल बांधने की जरूरत नहीं होती। और चमत्कार तात्कालीन होता है, स्थाई नहीं होता। जादू नकली होता है, असली नहीं होता। जादू तात्कालीन चमत्कार होता है, असली नहीं होता। मिट्टी को सोना बना देता है जादूगर, असली है क्या वो? और जादू करके पैसा ले रहा है सबसे, लाओ रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया संग्रह करता जा रहा है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब मिट्टी सोना बनाने की ताकत हो, ताकत है तुम्हारे पास, और पैसे क्यों मांग रहे हो? ये क्या पागलपन तुम्हारा? ये क्या पागलपन तुम्हारा? पागल हो क्या? मिट्टी को सोना बनाने की ताकत तुम्हारे पास है और पैसे क्यों मांग रहे हो? बाजार में ले जाओ ये ईंट जो है, ये जो कुमार के ईंट, इनको खरीदो 1-1.5 लाख में और इनको अरबों खरबों में बेचो, एक एक ईंट हाथ लगाओ ऐसा, सब सोने की ईंट बन गए। अब पीछे बाजार में जाकर के बैठ जाओ, पेट वड़गांव के बाजार में उधर आ जाओ। संभव है क्या किसी मिट्टी को स्थायी रूप से सोना बना के रखे? संभव है? जादूगर करता तो है, हाथ चालाकी, लेकिन देखने वाले तो मुग्ध तो हो जाते हैं, मुग्ध तो हो जाते हैं। असल में सोना बनाया था उन्होंने, ऐसा कहते हुए लोग आते हैं कि नहीं है? और प्रभावित होते हैं कि नहीं? यही लोग मिथ्या दृष्टि हैं, जो नकली को असली समझ बैठते हैं। यानी हमारी दृष्टि मिथ्या है, सत्य तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए मिथ्या दृष्टि। जिसकी दृष्टि मिथ्या है, सत्य को नहीं पहचान पाती, उस जीव का नाम मिथ्या दृष्टि। और जिसकी दृष्टि गहराई में जाती है, सत्य को पकड़ लेती है, उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि। सम्यक यानी सत्य, मिथ्या यानी नकली असत्य। नकली को ही असली समझ करके बैठ जाना, ये मिथ्या दृष्टि बना है। और असली को असली समझकर असली दृष्टि बनाए रखना, ये सम्यक दृष्टि बना है। तो भव्य चर्चा तो यहां हो रही थी, बहुत दूर गए हम, हाँ? टाइम परोड़ता नहीं है और विषय निकलते रहते हैं। हम क्या समझा रहे थे? अभव्य है व्यवहार। अब भगवान से आपको पता चल गया कि वो व्यक्ति जो है ना, तुम्हारा दोस्त जो है ना, वो अभव्य है। तुमने पूछा इसलिए हमने बताया, उससे मत कहना नहीं तो रोने लग जाएगा। यदि भगवान ऐसा कहेंगे तो उससे मत कहना, वो रोने लग जाएंगे अभव्य कहकर सुन करके। तो अभव्य रोएगा क्या ये बोलो? नहीं, मालूम करा दिया इनने, भव्य का लक्षण बताया, अभव के लक्षण बताया, मोक्ष का लक्षण बताया, सम्यक दर्शन का लक्षण, ज्ञानी बना दिया उसको। और ज्ञानी बन गया, शास्त्र का विज्ञ भी बन सकता है ना अभव जीव? नहीं, जब तक मालूम नहीं है, मालूम नहीं, अज्ञानी है। अब शास्त्र विज्ञ बन सकता है कि नहीं? बन गया, मान लो इन्होंने बना दिया और वो बन गया, अब उसको दुख होगा क्या? नहीं। हम प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, हमारा प्रश्न ये है कि अभव्य जीव को शास्त्र ज्ञानी होने के बाद दुख होगा क्या? नहीं, कि मैं अभव्य हूं। समझने के बाद दुख होगा? होगा नहीं होगा? हाँ, मैं अभव्य हूं, भव्य नहीं हूं, भव्य होता तो मोक्ष जाता, इस प्रकार से दुख होता ही नहीं। अगर दुख हो जाए तो वो अभव्य होता नहीं, जिसको दुख होता है वो भव्य ही रहता है। सुनो, इसके लिए एक उदाहरण दे रहा हूं, क्यों दुख होता है और क्यों दुख नहीं होता। आप चोर हैं, मान लो चोर हैं, जन्म से चोरी करना ही सीखा है, उस चोर को जो जन्म से चोरी करके सीखा, उस चोर को, उसको कहो तुम चोर हो, दुख होगा? मैं चोर हुई? और उस चोर को ये कहो तुम चोर नहीं हो, उसको विकल्प होगा, दुख नहीं कह रहा हूं, विकल्प होगा, मैं चोर हूं और मैं चोर नहीं हूं, ये क्यों कह रही दुनिया, ये क्यों कह रही मुझे, मैं डाकू हूं, फेमस हूं, फिर ये दुनिया ये पुकार रही है कि वो डाकू है ही नहीं, उसके दिल में क्या विचार आएंगे, इस दुनिया झूठ बोल रही है, ये आएगा क्या? नहीं। भले दुख ना हो पर उल्टा समझ में आ रहा है क्या? नहीं, उसको दुनिया उल्टी है, चोर को चोर कहने से दुख नहीं होता, वो कहेगा सही तो बोल रहे हैं वो, लेकिन मैं चोर तो हूं ही। सही बोल रहे हैं सभी लोग, सत्य ही बोल रहे हैं। अब दुख किसको होता है मालूम? जो सत्यवान है, चोर नहीं करता, और दुनिया सब मिलकर के कह रही है कि ये चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, दुखी होगा क्या? नहीं। वो जो स्वयं वो है, उसके अनुभूति वो कर रहा है, सत्य है, वो चोर नहीं है, वो जैसा नहीं है, उससे उल्टा कहने से उसको दुख होता है, वो जैसा नहीं है वैसा कह रहे हो, वो जैसा है वैसा कहो तो उसको भी दुख नहीं होगा। मैं मुनि हूं, तुम मुनि 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 कहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है क्या? और वही ये कहो कि तुम मुनि नहीं हो, तुम मुनि नहीं हो, तुम श्रावक हो, श्रावक हो, तुम श्रावक हो, कहो तो विकल्प तो होगा। जो मैं हूं वैसा ही कहोगे तो दुख नहीं होगा, मैं जैसा नहीं हूं वैसा कहना प्रारंभ करोगे तो विकल्प जरूर होगा। ये दुनिया झूठ बोलती है, मैं अपने तरफ निर्ग्रंथ हूं, अंदर में कोई रागादि भाव नहीं, फिर भी ये श्रावक ही है, ये वो सोच, मैं सोचूंगा दुनिया क्या उल्टी चश्मा लगाई है कि क्या है, मैं तो मेरे ऊपर मेरे तन पर तो कपड़े नहीं, आभूषण नहीं, कोई परिग्रह नहीं, रागादि भाव नहीं, और मुझे श्रावक कहती है दुनिया। शायद इनके चश्मा में निर्ग्रंथ व्यक्ति सग्रंथ दिखता है, और सग्रंथ व्यक्ति निर्ग्रंथ दिखता है, ये इनका दोष नहीं, इनके चश्मे का दोष है वो। ऐसा ही मुझे कहना पड़ेगा, चश्मे का दोष है, इसकी दृष्टि का दोष है, दृष्टि का दोष अलग होता है, और आत्मा तो निर्दोष ही रहती है, आत्मा तो निर्दोष ही रहती है। अभवी को तो दुख नहीं होगा क्योंकि वो है, वो अभव ही है। जो हूं उस परिस्थिति में मुझे पकारोगे तो मुझे दुख नहीं होगा। जैसे भव्य को जिस रूप में वो है वैसा कहोगे तो दुख नहीं होगा। भव्य को भव्य कहो तो दुख नहीं होगा, भव्य को अभव्य कहो तो दुख होता है। और अभव्य को तुम भव्य कहो तो दुख होगा। कब होगा मालूम, ये भी बताता हूं सुन लेना। अभव्य को तुम भव्य कहो तो दुख होगा। उस समय होगा जिस समय वो उसने बहुत तप किया, बहुत त्याग किया, बिल्कुल सब कुछ कर दिया, निर्ग्रंथ मुनि भी बन गया। अभव्य मुनि बन सकता है क्या? नहीं, ये भी ध्यान में रखना। अभव्य भी मुनि बन सकता है लेकिन छठा गुणस्थान नहीं होगा, इतना ठीक है। गुणस्थान बदलेगा नहीं, पहले गुणस्थान में ही रहेगा। पहले गुणस्थान के साथ अभव्य जीव मुनि बनता है और मुनि को देख करके सब लोग कहने लगे तुम तो भव्य हो, तुम तो भव्य हो, तुम तो भव्य हो। दुख होगा उसको, मुझे दुख भव्य क्यों कह रहे हैं, क्यों इतना त्याग और तपस्या करने के बाद भी मैं मोक्ष नहीं जा रहा हूं और मैं चाहता हूं स्वर्गीय सुख, मैं चाहता हूं संसार सुख। ये चाह भी मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है, और ये लोग मुझे वीतराग क्यों कह रहे हैं, मुझे भव्य क्यों कह रहे हैं, मुझे सम्यक दृष्टि क्यों कह रहे हैं। मैं साफ बता रहा हूं अपने मन की सारी बातों को, मेरे को कोई मोक्ष जाने की इच्छा नहीं होती, किंतु इस निर्ग्रंथ मुनि पद को धारण करके मुझे तो अधिक से अधिक स्वर्ग जाना है, इसलिए मुनि बन गया हूं। और मेरे मन में स्वर्गीय वैभव की कामना है, स्वर्गीय वैभव की कामना है, ये मैं सबको बता रहा हूं। और ये सभी लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं भव्य हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं वीतरागी हूं। तो मुनि कहेंगे कि ये लोग उल्टा चश्मा लगा के मुझे देख रहे हैं। कोई कोई कांच ऐसा होता है, उसको ऐसा देखो तो लोग छोटे दिखेंगे, ऐसा पकड़ करके उसको ऐसा कर दो लोग बड़े दिखेंगे। एक ही कांच आपको व्यक्ति को बड़ा भी दिखा सकता है और छोटा भी। ऐसा कांच कहाँ होता है मालूम है? रहता है क्या? हाँ, तो इस चश्मे में भी रहता है। दूर दृष्टि, समीप दृष्टि चश्मे जो होते हैं उसमें भी होता है, एक उसमें भी होता है जो दूरदर्शन बच्चे मेले में से खरीद के लाते हैं, देखते हैं, मशीन आता है एक, दूर के आदमी पास दिखते हैं और उसको पलटा के पकड़ो, ऐसा देखते थे ऐसा देखो तो पास का आदमी के किलोमीटर दूर दिखता है। तो ये वास्तव में हम उनसे दूर हैं या चश्मा ने उनको दूर दिखाया? हम दोनों जहां हैं वहीं हैं, लेकिन उस चश्मे के कारण से वो व्यक्ति और हम दोनों दूर दिख रहे हैं। इसको कहते हैं दृष्टि दोष। और उसका उपयोग ही नहीं करोगे तो ओरिजिनल स्थिति सामने दिखेगी। हम जहां हैं हम वहीं हैं, वो जहां हैं वहीं हैं। अभव्य जीव को भी आप भव्य कहोगे तो उसको विकल्प होता ही है, विकल्प होता है। क्या होता है? तुम मोक्ष जाओ, तुम मोक्ष जाओ कह रहे हो और वो मोक्ष जा नहीं रहा है। विकल्प होगा कि नहीं होगा? तुम मोक्ष जाओ, सम्यक दर्शन धारण करो, तुम मोक्ष जाओ, तुम भव्य बनो, अभव्य नहीं हो, अभव्य भव्य बनो, मोक्ष जाओ। वो जा पाएगा क्या मोक्ष? और नहीं जा पाएगा और आप कहते रहोगे तो विकल्प होगा क्या? नहीं, दुख होगा। ज्यादा कहोगे उसको दुख होगा, बार बार कहोगे तो वो कहेगा चले जा कहां का, मैं मोक्ष जाता नहीं हूं। वो अपना ही परिचय देगा, मट्ठा पिया है, छांछ पिया है तो खट्टी डकार ही आएंगे। एक दो बार कहेगा मोक्ष जाओ, हाँ जाऊंगा, जाओ मैं जाऊंगा, जाओ। बार बार कहने लगे आप रोज रोज आकर के कहने लगे मोक्ष जाओ, मोक्ष जाओ। अब वो अभव्य है, मोक्ष कैसे जाएगा? ज्यादा कहोगे तुमको उठा के पटका देगा। दुख हुआ कि नहीं उसको? दुख हुआ है, इसलिए आपसे झगड़ने के लिए खड़ा हो गया वो। अभव्य को आप भव्य नहीं बना सकते। जाओ जाओ कहोगे तो तुमको ही भेज देगा, लेकिन वो वहीं बैठेगा। एक उदाहरण और दिया जाता है भव्याभव के लिए। नदी में पानी होता है, बहुत पानी है, इस पार से उस पार जाने के लिए यात्रियों को कुछ साधन तो चाहिए। दो साधन होते हैं नदी पार करने के लिए, एक पुल होता है और एक नाव होती है। एक पुल होता है, एक नाव होती है। नाव खुद भी उस पार होती है और दूसरे को भी उस पार लगा देती है, खुद भी जाते हैं और दूसरे को भी ले जाकर के छोड़ती है। पुल, पुल खुद पानी में ही डूबा रहता, खड़ा रहता है, खुद नहीं जाता परंतु अपने पीठ पर से सबको पार कराता है। अभव्य जीव पुल के समान है और भव्य जीव नाव के समान है। भव्य जीव स्वयं भी मोक्ष जाता है कभी न कभी, और जब तक नहीं जाएगा तब तक दूसरे को भी रास्ता दिखाता रहता है। अभव्य जीव खुद तो संसार में ही रहेगा, लेकिन मुनि बन जाए, ज्ञानी बन जाए, शास्त्र अध्ययन कर ले, सबका कर सकता है कि नहीं? मोक्ष का स्वरूप समझ ले, संसार का स्वरूप सब समझ लेता है, और मोक्ष मार्ग वैराग्य ज्ञान सब दूसरे को तो दे सकता है वो, लेकिन खुद में उसको प्राप्त करने की शक्ति नहीं होती। वो पुल के समान है, पुल पानी में खड़ा है, पानी से उस पार जाने की शक्ति उसको नहीं है, परंतु दूसरे को भेज सकता है क्या? नहीं, पुल दूसरे को भेज सकता है, आओ मेरे पेट पर चढ़ो और उधर हो जाओ, बहुत बड़ा उपकार करता हूं, दुनिया का उपकार मैंने इतना किया कि मेरे पेट पर से हजारों गाड़ियां निकली, लाखों गाड़ियां निकली, सबको गाड़ियों तक की सहायता हमने पहुंचाई। ये तुम्हारा पुल क्या करता है? चार लोगों को बैठा कर नाव, नाव तुम्हारी ये नाव क्या करता है? ये तो चार लोगों को बिठा करके उस पार करता है, आओ मेरे ऊपर से, मैं हजार लोगों को एक साथ उस पार भेज देता हूं। अभव्य जीव मुनि बनता है, मुनि बन करके उपदेश भी दे सकता है, उपदेश देकर भव्य जीवों को हजारों लाखों करोड़ों का कल्याण कर सकता है, लेकिन खुद कल्याण नहीं कर सकता, उसमें पात्रता नहीं होती। पर इस बात का उसे दुख है क्या? हैं? इस बात का उसे दुख भी नहीं है। और यदि कहो तुम उससे, नहीं तुम भी हमको तो मोक्ष तुमने भेजा है, तुम्हारे पर भी हम उपकार करेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको, तुम्हारे ऊपर भी हम उपकार करेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको, हमारे ऊपर तुमने उपकार किया है, मोक्ष भेजा है, तो तुमको भी मोक्ष भेजेंगे। बार बार विपुल विकल्प करा दो, बन जाओ वितराग मुनि, बन जाओ गुणस्थान, चढ़ो छठे में आओ, आठवें में आओ, चौदहवें में आओ, जाओ मोक्ष। ज्यादा सताओगे तो कहेगा तू जा, तुम्हारा परिवार जा, सब जा, लेकिन मेरे को यहीं छोड़ के जा, यही कहेगा। अब वो जा नहीं सकता, अब वो मोक्ष नहीं जा सकता। पुल से कहो तुम, नाव जाती उस पार, तुमको क्या हो गया है? माता फोड़ो पुल से, नमस्कार करो, तुम्हारे चरणों में झुकाता हूँ माता, झुकाता हूँ। हे पुल, तुम भी जरा नाव की तरह उस पार हुआ कर, दूसरे को तो पार कराता है लेकिन खुद भी जरा पार हो जाए एक दिन, मानेगा पुल? माता फूट जाएगा नमस्कार करते करते, लेकिन पुल फूटने वाला नहीं है। वो कहता है माता काय को फोड़ रहे हो, तुम्हारे लिए मैं हूँ, मेरे लिए तुम नहीं, ये कहता है। तुम्हारे लिए मैं हूँ, तुम निकल जाओ, तुम्हारा कल्याण तुम करो, पर मैं तुम्हारे लिए हूँ, तू मेरे लिए नहीं है। पुल ये कहता है। भव्या भव की बात समझ में आ गई? बड़ी गहराइयां हैं जैन दर्शन में, डिफरेंस है। अब पक्का डिफरेंस समझ में आ गया? अब मत पूछना किसी दिन कि महाराज वो जो है भव्य जो है भव्य क्यों नहीं बनता, फिर वही प्रश्न। रात भर सुनाया रामायण और सुबह फिर प्रश्न वही पूछ रहा है व्यक्ति जिसने रात भर बैठा, वही व्यक्ति पूछ रहा है कि महाराज सीता राम को क्या होती है? ऐसा नहीं, विषय को ध्यान से सुनो, क्या समझाया क्या नहीं समझाया, और वैसा तुम भी समझाने की और समझने की चेष्टा करो किसी दूसरे को, तो आपको प्रैक्टिस होगा। तो भव्य क्या है अभव्य क्या है ऑटोमेटिक आपको मजबूत बनता जाएगी। एक बार सुनने से बैठता नहीं, वो उसकी चर्चा किया करो कालांतर में। तो अभव्य जीव, अभी तो टाइम है, अभव्य जीव को नमस्कार कर रहे हैं आप, और जय जिनेन्द्र कहोगी कि नहीं है? कहना ही पड़ेगा। वो जाए या न जाए आपको क्या बिगड़ने वाला है, कहो जय जिनेन्द्र, तुम मोक्ष जाओ जी तो कहें। जिनेन्द्र शब्द का नहीं समझा, प्रश्न क्या है? हाँ, नहीं जाने वाला है तो उसको, आपको मालूम है कि अभव्य भगवान ने कहा है और भगवान ने ये भी कहा है कि तुम्हारे जय जिनेन्द्र से वो मोक्ष नहीं जाने वाला, परंतु जय जिनेन्द्र कहना तो एक लोक व्यवहार ही हुआ। अब परमार्थ से जुड़ नहीं सकता, परमार्थ का लाभ उसको हो नहीं सकेगा, ये भी मालूम है आपको। अब जय जिनेन्द्र एक व्यवहार रूप में बोला, अब भगवान ने तो ये तो नहीं कहा कि जय जिनेन्द्र उनको मत बोलना, दूसरा शब्द मैं दे देता हूँ उसको बोलना। दूसरा शब्द तो भगवान ने दिया नहीं, क्या बोलना? भगवान ने कहा कि ये सामान्य चीजें हैं, जय जिनेन्द्र वगैरह, जय जिनेन्द्र बोलो। हाँ, अभावी मुनि बन जाता है तो नमस्तु करना जरूरी नहीं, असंयमी रहते हैं वो, उनको नमस्तु बोला नहीं जाता। असंजदम न बंदे, काय के लिए लिखा है भगवान ने, उपदेश दिया है भव्यों को, दिया है कि अभव्यों को? देखो अभव्य भव्य को नमस्कार कर सकता है, भगवान को नमस्कार करे, मुनियों भव्य मुनियों को नमस्कार करे, ये हो सकता है, लेकिन भव्य मुनि अभव्य मुनि को नमस्कार नहीं कर सकते, और श्रावक भी अभव्य मुनि को नमस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि गुणों की वंदना होती है, तो गुण है क्या वहाँ? तीनों चाहिए, वहाँ तीनों ही नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक चारित्र नहीं, नग्न वेश मात्र है, नग्न वेश मुनि अवस्था नहीं कहलाती। मुनि महाराज का, अभव जीव का दूसरा तीसरा भी नहीं होता। दूसरे में कौन आता है? जो ऊपर से आ रहा हो वो दूसरे में आता है, नीचे से जाते समय तो दूसरा होता नहीं। एक बार कहा था दूसरा गुणस्थान जो सम्यक्त को नाश करके आ रहा है, जिनको सम्यक्त प्राप्त हो चुका था वो नाश करके आ रहा है तो दूसरा गुणस्थान में आता है डायरेक्ट। और तीसरा गुणस्थान ऐसा है कि जो भव्य है उसी को सम्यक्त में रुचि जगेगी, जब रुचि जगेगी तो ही जंबलिंग शुरू होगा कि अभी तक तो हमने ये किया था अब ये करना है, तो ये सच है कि ये सच है, ऐसे जो परिणाम होते हैं वो तीसरे गुणस्थान के परिणाम। तो ये भी किसको होगा? जंबलिंग भी होगा तो वो भव्य जीव को ही होगा, अभव्य को जंबलिंग भी नहीं होगा, उसका तो ठोस विश्वास मुझे संसार सुख में ही सब कुछ सुख है, मुझे वही चाहिए, मोक्ष सुख के प्रति रंच मात्र विश्वास नहीं होता अभव्य जीव को, रंच मात्र विश्वास नहीं होता अभव्य जीव को मोक्ष में, सम्यक दर्शन में, यानी परमार्थ में, शरीर रहित सिद्ध भगवान बनने के मार्ग पर विश्वास ही नहीं होता। विश्वास हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर भव्य कहलाएगा, वो भव्य है ही नहीं वो। ये तो तीसरा गुणस्थान भी भव्य को ही होगा, दूसरा गुणस्थान भी भव्य को ही होगा, अभव्य जीव को सदा पहला गुणस्थान ही रहेगा। ये हो गया जय जिनेन्द्र का अर्थ हमने समझा दिया आज। जय जिनेन्द्र का मतलब जिनेन्द्र भगवान के समान। साहब धन्यवाद, आप मेरे सामने आए, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र भगवान ने जैसा संसार के समस्त दुखों को, कर्मों को, मिथ्यात्व को सब जीत कर अपनी आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त किया, वैसे आप में भी शक्ति है। आप भी गजब के हैं, भव्य हैं। आप भी गजब के हैं, कम नहीं आप भव्य हैं, जय जिनेन्द्र साहब, ये कहा जाता है। ये कितना बड़ा सम्मान है, जय जिनेन्द्र कहना इतना बड़ा सम्मान है, नमोस्तु कहना ये ठीक नहीं, नमोस्तु नमस्कार ये नहीं कहना, जय जिनेन्द्र सबसे बड़ा सम्मान है उसका। क्या कह रहा है वो? तुम्हारे पास भी भगवान की शक्ति है, भगवान की, मुनि की नहीं, भगवान की, भगवत पद की शक्ति है, उसको प्राप्त करो, ऐसा जय जिनेन्द्र बोल रहा। तो हाथ जोड़ना ये आपका, आप सम्यक दृष्टि हैं तो आप लोक विनय कर रहे हैं, मान के चलिए वो ही माता पिता हैं तो आप माता पिता मान लो अभव भी हैं, नहीं हो सकते? इट मे बी पॉसिबल। जब आप अभव्य हो सकते हैं तो माता पिता क्या जन्म देने वाले अभव्य नहीं रह सकते? इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है अभव्य हैं तो चरण स्पर्श नहीं करोगे, तुमको उनने जन्म दिया है, तुम भव्य हो, वो अभव्य हैं, वहां लोक व्यवहार तो करना पड़ेगा, परंतु ये नहीं कहना पड़ेगा नमस्कार या नमोस्तु, ये तो धर्म का घातक है, नमस्तु बोलना और नमस्कार करना, सम्यक तुम्हारा सम्यक दर्शन को धक्का लग जाएगा नमस्तु बोलोगे तो, अंधे हो नमस्तु बोलते हो तो, ज्ञानी नहीं। तो क्या बोलना? जय जिनेन्द्र, और हाथ जोड़ना लोक व्यवहार, चरण स्पर्श करना लोक व्यवहार। एक व्यक्ति सामने से कोई अजैन आ गया तो अपने हिसाब से वो भी देखो क्या बोलता, उनके यहां भी यही सिद्धांत होगा, जय श्री राम कहता है, कहता कि नहीं आप जैन हैं, सामने आ गए जैन साहब जय श्री राम, बहुत आदर के साथ बोलता है, आप क्या बोलते? जय जिनेन्द्र बोलते। उन्होंने जय श्री राम बोला, आपने जय जिनेन्द्र बोला, आपके जिनेन्द्र कैसे हैं? 18 दोषों से मुक्त, और उनके राम कैसे हैं? परिग्रह सहित या परिग्रह मुक्त, सदोष या निर्दोष, तो ठीक है उनके साथ वो रहने से। राम चाहे दोषों से युक्त हो चाहे दोषों से रहित, तो इससे कोई मतलब नहीं। आपको तो जय जिनेन्द्र बोलना है। वो क्या बोल रहा है? अपने विश्वासों के आधार पर उन्होंने आपको जय श्री राम बोला, तो उनका विश्वास है। वो परिग्रहधारी ही भगवान, उनका विश्वास उनके साथ है। आपको उससे क्या लेन देना? आपको तो बोलना है जय जिनेन्द्र। उनसे क्या कहा आपने जय जिनेन्द्र बोल करके? उनसे ये कहा कि जिनेन्द्र भगवान के समान आपके शरीर के भीतर भी एक आत्मा है, परमात्मा बन सकता है, 18 दोषों से मुक्त हो सकता है, परिग्रह से रहित हो सकता है, पापों से मुक्त हो सकता है, उस पर विजय प्राप्त करो। यही बोला। अजैन हो तो भी बोला, आपका जैन साधर में सम्यक दृष्टि जीव मिल गया, उनके साथ भी यही व्यवहार किया, माता पिता के साथ भी यही व्यवहार हुआ, जय जिनेन्द्र व्यवहार ही होगा सब जगह। आप क्या करते हैं मुझे तो मालूम नहीं। माता पिता से क्या कहते हैं? नमस्कार कहते थे? कहते थे नमस्तु बोलो ना, नमस्तु बोलो। मालूम नहीं था, अब तो मालूम हो गया। अब क्या बोलना है? नमस्कार या नमस्तु का उपयोग केवल पंच परमेष्ठ और नौ देवता के लिए होता है, और जय जिनेन्द्र का प्रयोग सबके लिए होता है, सामान्य सबके लिए। अब प्रतिमाधारी आ गए तो वंदना, क्षुल्लक ऐलक आ गए तो इच्छामि, आरिका यदि है तो वंदामि। हमने जय जिनेन्द्र का आज समझाया, मैं कल समझाऊंगा इच्छामि का, वंदामि का। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांद रहे, अब तक हम विषयांद रहे।